मन बदलो चिंतन बदलो, मन बदलो चिंतन बदलो, बदलो निज संस्कार, बदलो निज संस्कार, संस्कार जब बदलेंगे तो बदलेगा संसार, बदलेगा संसार, सुहाना सच गाएगा
जमाना बदल जाएगा,
सुहाना सच गाएगा
जमाना बदल जाएगा,
मन बदलो चिंतन बदलो, मन बदलो चिंतन बदलो।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आगे के सोफाज खाली पड़े हैं, कोई पीछे से आगे आना चाहे तो आ सकते हैं। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को लक्ष्य दिया है, नारी से श्री लक्ष्मी और नर से श्री नारायण बनने का। हम सब ने भक्ति मार्ग में देवताओं के चित्र देखे भी हैं और उनकी पूजा भी की है। देवी देवताओं की महिमा में कहती हैं कि ये देवी देवता कमल नयन है, माने इनकी जो आँखें हैं वो कमल जैसी हैं, कमल हस्त हैं, इनके हाथ कमल तुल्य हैं, कमल पाद हैं, इनके पांव कमल जैसे हैं। हरेक इंद्री से पहले कमल शब्द लगाते हैं और कमल प्रतीक है न्यारा और प्यारा रहने का, बुराई से अछूता रहने का। तो ये जितने भी देवी देवता हैं इनके अनेक कारनामे दिखाते हैं, लेकिन अनेक कारनामे करते हुए भी इनकी इंद्रियां अछूती रही। और बाबा ने हमको देवी देवता बनने का लक्ष्य दिया है तो हमको भी ऐसा ही करना है। अनेकों कारनामे करते हुए, कर्तव्य करते हुए हम भी बुराइयों से अछूते रहें, अपनी इंद्रियों को किसी बुराई से छूने ना दें, इंद्रियों को भी छूने ना दें और मन को भी छूने ना दें। क्योंकि कई बार इंद्रियां तो टच नहीं करती लेकिन मन टच कर लेता है संकल्प से। और बाबा कहता है वैष्णव माना जो संकल्प से भी टच न करे। तो ऐसा मन और इंद्रियों पर हमारी कमांड हो, मास्टरी हो। दुनिया में यूनिवर्सिटीज में अनेक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और उनके लिए मास्टरी शब्द यूज होता है। जैसे आजकल एमबीए बच्चे बहुत पढ़ते हैं। अब एमबीए का अर्थ क्या है? मास्टरी इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसी तरह से कोई इंग्लिश में एमए करता है, भाई मास्टरी इन इंग्लिश, संस्कृत में करता है मास्टरी इन संस्कृत। लेकिन सवाल ये है कि भाषाओं पर मास्टरी की या बिजनेस के क्षेत्र में मास्टरी की, उससे पहले अपने मन पर और अपनी इंद्रियों पर मास्टरी की। और जिसकी अपने मन पर मास्टरी नहीं है, मन नियंत्रण में नहीं है, मन कहना नहीं मानता आत्मा का, तो वो बाह्य जगत में क्या मास्टरी करेगा, बाह्य जगत को क्या कंट्रोल करेगा। एक बार एक भाई ने शिकायत की थी कि मेरी पत्नी और मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता। तो मैंने पूछा था कि पत्नी आपके साथ कितने साल से है? उसने कहा 6 साल से और बच्चा 4 साल से, तो मैंने पूछा आपका मन आपके साथ कितने साल से है? उसने कहा ये तो जन्म से भी पहले मेरे साथ था। तो ये इतना पुराना साथी ये कहना मानता है? उसने कहा ये भी कहना नहीं मानता। तो जो पुराने वाला साथी कहना नहीं मानता, अविनाशी साथी, और 6 साल वाले और 4 साल वाले से आप कामना करते हो कि वो आपका कहना मान लें, ये कैसे होगा? पहले पुराने साथी को तो मनाओ, उसको आज्ञाकारी बनाओ, तो नए साथी भी कहना मानेंगे। संस्कृत में एक श्लोक आता है जिसका हिंदी में अर्थ है कि दुनिया में 5 छोटे छोटे जीव हैं। एक है पतंगा जिसको मौत कहती हैं, एक है मछली, एक है हिरण, एक है हाथी और एक है भंवरा। ये 5 बहुत छोटे छोटे जीव हैं, आप सबने देखे, और ये 5ों जीव अपनी एक एक इंद्री की अधीनता के कारण मारे जाते हैं। और उस श्लोक में फिर मनुष्य को पूछा गया है कि हे मनुष्य, तू तो 5ों के अधीन है, तो तेरा क्या होगा? अब आप देखिए, पतंगा एक बहुत छोटा सा जीव है, जैसे ही अपन बल्ब जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, उड़ करके आ जाता है। बाबा भी हम बच्चों को कहता है मुझे सच्चे परवाने चाहिए। एक होते हैं फेरी पहनने वाले, एक होते हैं जल मरने वाले। तो वही परवाना, छोटा सा परवाना लाइट को देख करके खींचा आता है। अब परवाने के पास आँखें भी हैं और मन भी है। आँखें उसको देखती हैं, आकर्षित होती हैं, और उसको भी संकल्प आता है, तभी तो चलता है ना। आत्मा उसमें भी है, तभी वो दौड़ के उस लाइट की तरफ जाता है, लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं है। तो बुद्धि की लगाम ना होने के कारण मन दौड़ करके उस शिखा की तरफ पहुंच गया, और बुद्धि है नहीं तो वो ये भी नहीं बता पाती कि भाई यहाँ नजदीक मत जाना, जल जाओगे। और वो पतंगा आँखों के आकर्षण में अपने जीवन से हाथ धो लेता है। अब ये आँखों का आकर्षण इतना भयानक है, बाबा भी मुरली में कहते हैं बच्चे आँखें बड़ा धोखा देती हैं, आँखों की घड़ी घड़ी संभाल करो, आँखें क्रिमिनल ना हो जाएं, क्रोधी ना हो जाएं, ईर्ष्या ना आ जाए। लेकिन वास्तव में तो आँखों का दोष नहीं है, मन का जैसा संकल्प होता है आँखें भी वैसा ही व्यवहार करती हैं। ये मन दो तरफ से जुड़ा हुआ है, एक तरफ तो आत्मा से। अगर आत्मा का इस पर कंट्रोल है तो ये नियंत्रण में है, लेकिन आत्मा का कंट्रोल छूट जाता है तो ये इसका नियंत्रण इंद्रियों के पास आ जाता है। अब जैसे ही आंख ने देखा ये आकर्षित हो गया। अगर आत्मा का नियंत्रण होता तो आंख को देखते ही आत्मा इस मन को कहती उधर जाना मत। जैसे अपन छोटे बच्चे को कहते हैं ये आग पड़ी हाथ लगाना मत, ये मिट्टी है छूना मत, ये चाकू है दूर रहना इससे। तो जैसे ही आंख किसी सुंदर चीज को देखती तो आत्मा कहती मन को उधर मत जाना। तो आंख भी कितनी देर देखेगी जब मन साथ नहीं देगा, तो देखते हुए भी नहीं देखेगी, इन्वॉल्व तो तब होती है। लेकिन अगर आत्मा की लगाम ढीली है, वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बताती नहीं है, तो ये मन चला हो जाता है, मन मर्जी करता है, स्वतंत्र हो जाता है, अंकुश खत्म हो गया। फिर आंख के थ्रू जैसे ही कोई आकर्षण करने वाली चीज देखेगी तो फिर उसके चारों ओर मंडराने लगेगा, जैसे पतंगा शिखा के चारों ओर मंडराता है। और मन तो एक ही है, दो तीन तो है नहीं। अब वो चाहे तो आंखों के द्वारा चीज को देख के उस पे मंडरा ले, और चाहे परम सुंदर परमात्मा की तरफ चला जाए। मन तो एक ही है, तो अगर आत्मा के नियंत्रण में हो तो आत्मा कहेगी मन मना भव, भगवान को देखो, उससे सुंदर कोई नहीं है, उसकी सुंदरता परमानेंट है, अविनाशी है, उस सुंदरता में सुख है, वो एक रस सुंदरता है। और आत्मा का अंकुश नहीं है तो आंख के द्वारा जो चीज देखता है सोचता है बड़ी सुंदर है, रंग बड़ा सुंदर है, रूप बड़ा सुंदर है, और उसी का मनन चिंतन करता रहता है, मन मना भव को भूल जाता है। दुनिया में 100 में से 90 अपराध आंखों के कारण होते हैं। सुंदर चीज देखी ललचा गए, उठा लिया, सुंदर चीज देखी इच्छा जागृत हुई, उसको पूरा करने के लिए कैसे भी गलत हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए, सुंदर चीज देखी उसका पीछा किया, फिर पकड़े गए, या डांट खानी पड़ी, या इंसल्ट हो गई। तो इन आंखों के आकर्षण में आदमी कितना अपना समय, चरित्र और कितनी अपनी शक्ति नष्ट करता है। आंखों के बिना भी हमारा काम नहीं चलता। कहते आंख गई तो जहान गया। भक्ति मार्ग में तो ऐसा मिसाल दिखाते हैं कि जब किसी की आंख ने किसी को धोखा दिया तो व्यक्ति ने अपनी आंखें ही निकाल दी, या आंखों में मिर्च डाल दी आंखों को सजा देने के लिए। लेकिन वो तो हठयोगियों का मार्ग है। हमें आंखें तो चाहिए, आंखें नहीं होंगी तो जीवन क्या है। लेकिन आंखें ऐसी चाहिए जो हमें उलझाएं ना। इसलिए भक्ति में कहती हैं, योगी अंधा भी होता है, बहरा भी होता है, और गूंगा भी होता है। देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता, और बोलते हुए भी नहीं बोलता। तो ये डिसीजन आत्मा लेती है कि मुझे क्या देखना है, कितना देखना है, और किस दृष्टिकोण से देखना है। आंखें तो खुली ही रहेंगी। अगर अंदर का हमारा दृष्टिकोण किसी भी दृश्य को देखते ही बदल जाए तो खुली आंखें कोई नुकसान नहीं करती। अब अपन ने कोई बहुत बढ़िया मकान देखा और मन उसमें जाए तो अंदर से आत्मा एकदम कहती है ये तो कलियुगी रावण की ऊंची ऊंची अटारियां हैं, ये तो लंका है, द्वारिका तो अभी आने वाली है, ये तो ताश के पत्तों की तरह गिरने वाली चीजें हैं, ये तो दुनिया का पंप एंड शो है, इनके नीचे ये नींव नहीं है, ये तो बिना नींव की चीजें हैं। कलयुग की हर चीज टेम्परेरी है। जो 2500 साल चले, जो परमानेंट है, सुखदाई है, सात्विक है, सात्विक संकल्पों से, सात्विक तत्वों से, सात्विक धन से बनी हुई जो हमारी द्वारिका है, वो तो अभी आने वाली है। तो आंखों ने देखा लेकिन मन को उलझने नहीं दिया, क्योंकि बुद्धि ने उसकी डोर पहले ही खींच ली। उलझने से पहले हमको इस दुनिया का कुछ नहीं देखना, जाने वाली दुनिया का क्या देखना। तो देखते हुए भी ना देखने के बराबर हो गया। किसी सुंदर देह को देखा, आंख तो देखेगी भले देखे, लेकिन अंदर से आत्मा ने क्या कहा, मन को क्या कहा, देखो इस दुनिया के जितने भी, किसी में बीमारी की बदबू है, किसी में पसीने की बदबू है, वो तो परमानेंट सब में ही है, कीटाणु तो सबके शरीर में, अब सतयुग में जो श्री लक्ष्मी का सर्वांग सुंदर शरीर है या श्री नारायण की कंचन काया है, उसमें तो तुम फंसे नहीं। आत्मा मन को कहती है, उस शरीर का तो तुमको आकर्षण हुआ नहीं, और ये कलियुग की पतित काया, विकारी काया, बीमार काया, नश्वर, जरा, मृत्यु, सब चीजों के अधीन काया, इसको तुम क्या देख रहे हो? ये तो आज अकल नहीं है। एक एक्सीडेंट हुआ, रूप बिगड़ जाएगा, बीमारी आई, शक्ल कुछ की कुछ हो जाएगी। तो अगर देखना ही है तो उन शरीरों को देखो जो सर्वांग सुंदर हैं, पवित्र हैं, जिनको स्वयं भगवान ने रचा है। तो भले हमने देखा, आंखें खुली हैं, लेकिन मन की बागडोर किसके हाथ में है? आत्मा के हाथ में है। तो देखते हुए भी नहीं देखा, उड़ती उड़ती नजर से देखा, आत्मा को देखा। इसके अंदर जो आवरण के भीतर जो बैठी है वो आत्मा, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मुझे उससे काम है। उसको किसी भी तरीके से ज्ञान मिलना चाहिए, उसकी बुद्धि में किस तरीके से परम धाम तक ले जाऊं, बाबा से जोड़ूं, कैसे भी इस आत्मा को भी बाबा का बच्चा बना दूं। तो दो चिंतन चले, देह से ध्यान हट गया और आत्मा के कल्याण की भावना अंदर आ गई। तो देखते हुए भी पुण्य जमा हो गया। अगर अंदर का कंट्रोल ढीला है तो मन उलझेगा, कपड़े में भी उलझेगा, शक्ल में भी उलझेगा, सामान में भी उलझेगा, जो भी है, और अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा। मिलेगा क्या? कुछ मिलता है क्या? कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए इस संसार में रहते हुए ना आंखों को बंद करने की जरूरत है, ना मन को दबाने की जरूरत है, लेकिन उसकी जो लोकस ऑफ कंट्रोल है, उसकी जो लगाम है, उसको हर घड़ी कसके रखने की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है। बाह्य जगत को सही दृष्टि से देखने के लिए अंदर का जो चिंतन है वो अपडेट होना चाहिए। बाबा जिस दृष्टि से हमें देखने को कहता है, हम उस दृष्टि से देखें। एक तो हमारी 2500 साल वाली दृष्टि है पुरानी, तो क्या बाबा आ गया तब भी हम उस पुरानी दृष्टि को ही रखेंगे, पुराने संकल्पों को ही रखेंगे? बाबा अपडेट कर रहा है, क्या हम उसको अपडेट नहीं करेंगे? अपडेट क्या है? देह को देखते भी आत्मा को देखो। देह को देखना ये तो पुरानी रीत है, या बाह्य चीजों को देखना ये पुरानी रीत। तो अगर पतंगे में और हमारे में अंतर है तो यही अंतर है कि हमारे पास बुद्धि की लगाम है। और अगर मनुष्य भी बुद्धि की लगाम को यूज न करे तो वो भी किसके बराबर हो गया? पतंगे के बराबर हो गया। और उसका भी हाल क्या होगा जो पतंगे का हाल हुआ? अब देखो, जितने भी क्राइम होते हैं वो क्यों होते हैं? थोड़े दिन पहले मैं एक जेल में गई तो वहां एक नौजवान था, मैंने उसको पूछा, भाई तुम तो पढ़े लिखे लगते हो, जेल में कैसे आ गई? उसने कहा, बहन जी एक बहुत बड़ा धोखा खाया मैंने। मेरे घर के सामने एक बहुत सुंदर मकान बनना शुरू हुआ तो मैं रोज कहता था, सोचता था ये किसका मकान है। बनता गया, बहुत सुंदर कोठी बन गई, फिर एक मंजिल उस पर और चढ़ गई। मुझे पता पड़ा मेरा ये क्लास फेलो है, उसी का ये मकान है। तो मेरे मन में आया, मेरा क्लास फेलो इतनी सुंदर कोठी में रहे और मैं इतने साधारण से मकान में रहूं, इसकी बाजू में, क्या मैं ऐसा नहीं बना सकता? मैं रोज खिड़की में से देखूं, रोज मुझे ख्याल आए मेरा भी ऐसा होना चाहिए, मेरा भी ऐसा होना चाहिए, मेरा भी ऐसा होना चाहिए। तो मैंने एक दिन पिताजी को कहा कि अपन भी ऐसा मकान बनाएंगे, गांव की जमीन बेच दो। तो पिताजी ने कहा, नहीं, दादे परदादों की जमीन नहीं बेची जाती है, क्या पता कब काम आ जाए। 10 दिन बाद मैंने फिर कहा पिताजी को, मैंने सोचा मैं मना लूँगा, लेकिन पिताजी ने फिर वही जवाब दिया। 20 दिन बाद फिर कहा, उन्होंने अगली बार थोड़ा जोर से बोला कि कुछ भी हो जाए मैं तो जमीन बेचूंगा ही नहीं। समझाया पहले, फिर थोड़ा जोर से बोला। तो मैंने सोचा जब तक ये बूढ़ा रहेगा ना तब तक मुझे ये कोठी मिलनी नहीं, तो ये जाए तो मुझे कोठी मिले। तो एक दिन मैंने सोए सोए पिताजी का कर दिया काम, तो मुझे कोठी तो नहीं मिली पर ये कोठरी जरूर मिल गई। अब देखो, आंख देख रही है और मन पतंगे की तरह उस कोठी के चारों ओर मंडरा रहा है और बुद्धि ने लगाम को ढीला छोड़ा हुआ है। अगर बुद्धि ने लगाम को कसके पकड़ा होता कि नहीं दुनिया में किस किस की बराबरी करोगे, इससे भी सुंदर सुंदर कोठियां, और कोई व्यक्ति बड़ी कोठी में रहने से महान थोड़े बनता है, उसके विचार आलीशान चाहिए, कर्म आलीशान चाहिए, मकान चाहे आलीशान हो या ना हो। तो अगर ये कंट्रोल होता तो वो मन को नियंत्रण में रखती, आंखें भले देखती लेकिन मन न उलझता, और मन नहीं उलझता तो आंखें क्या कर लेती। तो वो व्यक्ति जिस सुख के साथ रह रहा था रहता, तो देख करके, चाहे हम चमड़ी को देखें चाहे दमड़ी को देखें, देखने से मन जाएगा, क्राइम हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा दुनिया के हिसाब से क्राइम है। देखो बाबा ने तो हमको क्या कहा, व्यर्थ संकल्प भी क्राइम है, ब्राह्मणों की भाषा में तो विकारी संकल्प तो और भी बड़ा क्राइम है। अब आप बच्चे संपूर्णता के नजदीक पहुंच रहे हो तो आपको व्यर्थ ख्यालात भी नहीं आने चाहिए, शक्ति जाती है, बाबा से लिंक टूटता है। तो ये भी संपूर्ण बनने वालों के लिए एक बहुत बड़ा अपराध है, इष्ट बनने वालों के लिए। बाबा ने 3-4 दिन पहले मुरली चलाई, उसमें कहा कि आप बच्चे गुप्त रूप में देवता हो। लौकिक दुनिया में देवताओं के मंदिर में जाते ही हैं तो भक्तों के भी संकल्प थोड़ी देर के लिए शुद्ध हो जाते हैं, तो आप तो गुप्त रूप में देवता हो, आपके संकल्प कितने शुद्ध होने चाहिए। तो जो अंदर से जागरूक है, जिसका अटेंशन है, वो गलत जगह संकल्प को जाने ही नहीं देगा, जाते ही थोड़ा सा भी जाने लगेगा। जैसे कई माताएं बड़ी जागरूक होती हैं, थोड़ा भी बच्चा गलत की तरफ जाने लगे तुरंत पकड़ लेती हैं, जो थोड़ी अलबेली होती हैं, आलसी होती हैं, लापरवाह होती हैं, वो 2-4 गलत काम कर लेगा उसके बाद जागेंगी, फिर बच्चे को भी डांटेंगी, नुकसान भी हो गया। तो हमको भी ऐसा जागरूक बनना है कि ये जरा भी जाने लगे तुरंत इसको वापस खींच करके ले आए। तो आंखों के बाद आंखें आत्मा के सबसे करीब, इसलिए अंदर के विचारों को आंखों के द्वारा अपन प्रकट करते हैं, दृष्टि भी देते हैं, तो इसके पीछे राज क्या है। आत्मा की शक्ति आंखों के द्वारा ही पास होती है। आंखें बहुत इंपॉर्टेंट, और इससे थोड़ी सी दूरी पर हमारे कान। तो श्लोक में कहा गया है कि जो हिरण है वो कान की अधीनता के कारण मारा जाता है। हिरण के पास कान तो हैं लेकिन विवेक उसके पास भी नहीं है। शिकारी जोर से ढोलक बजाता है, आवाज सुन के वो आकर्षण में आता है, खड़ा हो जाता है। अब भागते हिरण को तीर मारना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन खड़े हिरण को मारना बड़ा सरल है। तो ढोलक की आवाज सुन के वो खड़ा हो गया, शिकारी ने तीर मारा और बेचारा हिरण मर गया। अब हिरण के पास भी केवल कान है, बुद्धि उसके पास भी नहीं। अगर बुद्धि होती तो उसे बताती ये तेरे को फंसाने के लिए ढोलक बजाया है, भाग जा, लेकिन बुद्धि है नहीं। अब हम बच्चों की भी बहुत सारी बातें कानों के द्वारा अंदर जाती हैं। सुनने का शौक, मुझे भी सुनाओ, मुझे भी बताओ, कोई नहीं बताए तो उससे नाराज हो जाते हैं, देखो मुझे नहीं बताया, उसको बता दिया, मेरे से छिपा लिया। अब काम की है कि नहीं काम की है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमको भी बताओ, उसको बताया तो। इसलिए कोई गलत काम करता है तो उसके उसको कहते कान पकड़ो, आज के बाद नहीं करूँगा। कभी ये नहीं कहते कि आँख पकड़ो कि नाक पकड़ो, कान पकड़वाते हैं। बच्चों को भी स्कूल में कान पकड़वाते हैं, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ कानों से सुनने के कारण होती हैं। अब बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि एक मेरे से सुनो, बाकी किसी की मत सुनो। और हमारा भी वायदा है तुम संग बोलूं, तुम संग खाऊं, तुम संग चलूं, तुम से ही सुनूं। इसको कहते हैं एवे बिचारी प्रेम, एवे बिचारी लगन, एवे बिचारी साधना। एक भगवान से ही सुनना है, भगवान को ही सुनाना है। लेकिन बाबा को छोड़ करके अगर हम और लोगों की बातें कानों में डालते, टीवी की बातें कानों में डालते हैं, मनुष्यों की बातें कानों में डालते हैं, तो क्या होगा? जैसे बाबा अमृत देता है और उसमें जहरीली बातें घुल जाएंगी। कहते अमृत दूध भरे घड़े में एक बूंद भी जहर की पड़ जाए तो सारा क्या हो जाएगा? जहर हो जाएगा। और इन सब बातों को तो हमने 2500 साल सुना ही है। भगवान नहीं आया था उससे पहले हम क्या कर रहे थे? भगवान के अलावा हमने सब कुछ सुना, लेकिन क्या मिला? गिरते आए, गिरते आए, गिरते आए, कईयों से बैर हो गए, कईयों से दूर हो गए, कितनी बुराइयां आ गई। अब सबसे मित्रता करने का, सबको अपना बनाने का और अपने को शुद्ध करने का समय आया है। और उसका आधार है कि हम केवल एक से सुने, एक की श्रीमत पर चलें, एक की बातों पर विश्वास करें और उसी के ऊपर दृढ़ता के साथ चलें। भगवान सुना रहा है फिर भी हम दूसरों की सुनते हैं, तो क्या होगा? इन कानों के माध्यम से भी हमसे बहुत अपराध हो जाएंगे। इसलिए हमारी बाबा मुरली में कहता है, कई बार एक दो दिन पहले भी आया, कि जो खराब बातें उनको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो। लेकिन बड़ी दादी बहुत अच्छी बात कहा करती थी। बड़ी दादी कहती थी एक कान से सुन के दूसरे कान तक बात जाएगी तो बीच में कहीं ना कहीं अटकने का रहता है। इसलिए उसी से सुनो और उसी से निकालो, दूसरे तक लेके मत जाओ। माना तुरंत निकालो, विचार किया बात के ऊपर, विचार किया माना थोड़ा अंदर ले गए। विचार करना ही नहीं है, गलत है तो सुना और निकाल दिया, विचार करने की क्या आवश्यकता है? तो अगर हम भी कान के अधीन है तो हमें और हिरण में क्या अंतर हुआ? वो भी कान के अधीन है। इसलिए इन कानों के द्वारा कहते हैं भाई, कान में जो आए और वो अपनी मर्जी से जो भी डाल जाए तो कान को क्या कहेंगे? क्या बन गया? ये कोई डस्टबिन थोड़े है कि जो आए और जो मर्जी डाल दे। ये तो देखो कितनी सुंदर सुंदर हमको एक विधि दी है। मुरली इसी कान से सुनते हैं, उसी हाथ में अपन प्रसाद लें और उसी हाथ में खराब चीज लें, उसी कान से हम भगवान का प्रसाद अंदर ले जाएं, उसी कान से हम निंदा चुगली परचिंतन तेरा मेरा इधर का उधर का कुछ कुछ अंदर ले जाएं। तो ये अंतिम जन्म है, हमें ज्ञान सुन के कानों को भी पवित्र बनाना है। जैसे प्रकृति के तत्व पवित्र बनते हैं ना, और यहाँ मधुबन में हम आए हैं तो इसीलिए आए हैं कि भाई बाबा की मुरली सुनेंगे, ज्ञान सुनेंगे। इसलिए यहाँ तो मुख का भी मौन तो कानों का भी मौन। मुख को तो चलो दरवाजा है बंद कर लो, लेकिन कानों को क्या करेंगे? वो तो बिना दरवाजे के है ना, अपने आप भी आवाज अंदर चली जाती है। तो कान के लिए क्या तरीका है? सुनी अनसुनी कर दो। और तीसरा जीव है भंवरा, वो खुशबू के अधीन है। एक फूल में खुशबू आती है और भंवरा उसका मकरंद चूसने के लिए उसमें प्रवेश करता है। खुशबू आती रहती है, उसको पता ही नहीं पड़ता कितनी देर हो गई, और सांझ होती है तो वो फूल बंद हो जाता है, भंवरा उसके अंदर ही पैक हो जाता है, ऑक्सीजन उसकी बंद हो जाती है और बेचारा अंदर ही दम तोड़ देता है। आज की दुनिया में भी लोगों ने ऐसी खुशबू बनाई है, कई बार आप समाचार सुनते ही हैं, जैसे बच्चों को किडनैप करना होता है तो ऐसी खुशबू वो लोग छिड़क लेते हैं कि बच्चा उस खुशबू का अनुसरण करने लगता है। वो इतनी आकर्षक खुशबू होती है कि व्यक्ति ऑटोमेटिक उसके पीछे चल पड़ता है, उसको पता नहीं पड़ता मैं कहाँ जा रहा हूँ, और उसको फिर ऐसी जगह ले जाते हैं जहां से उसको उठाना सरल हो जाता है। तो देखो, मनुष्य की नाक की कमजोरी का अपराधी लोग फायदा उठाते हैं। और ये जितनी भी खुशबू की चीजें बनती हैं, ऐसे तो फूलों में बहुत खुशबू है, वो तो नेचुरल है, लेकिन और खुशबू की जो चीजें बनती हैं उनको फिर प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे केमिकल उनमें डाले जाते हैं, ऐसे तो वो रहेंगी नहीं। और वो केमिकल या उनमें जो भी और चीजें डाली जाती हैं, तो आप इनकी बनाने की अगर विधि कहीं किसी से जानेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत सारे जानवरों को सता सता करके ये खुशबू की चीजें बनाई जाती हैं। तो कोई तड़फे, कोई आह भरे और हमें खुशबू आए, ये तो बहुत ही हिंसक कर्म हो गया, ये तो बहुत ही निकृष्ट कर्म हो गया। ऐसी खुशबू किस काम की जो किसी की आहें निकल करके बनाई जाए। नेचुरल खुशबू नेचर ने बहुत दी है, इसलिए जितनी भी आर्टिफिशियल खुशबू हैं, और वो चीजें महंगी भी बहुत होती हैं, तो इसलिए अपन कोशिश करें उनका प्रयोग कम से कम करें, ना करें। और दूसरा, नाक की खुशबू इस शरीर के लिए भी कई बार बड़ी भारी पड़ती है। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी आती है, पुराने जमाने में चीनी बूरा नहीं होती थी, गुड़ हुआ करता था, और वो भी कोल्हू का, उसमें खुशबू अच्छी होती थी। तो एक कहानी आती है कि एक गरीब महिला का बच्चा बड़ा बीमार था, वैद्य ने कहा था कि इसको गुड़ मत खाने देना, दवाई देता था वो, लेकिन पुराने जमाने में हांडी में गुड़ रखा करते थे, छोटा घर था और महिला ने हांडी में गुड़ डाल के रखा हुआ था, बच्चे को खुशबू आती थी, उसमें से गुड़ निकाल के खा लेता था, सो जाता था। माता को लगता था कि वैद्य की दवाई लग नहीं रही है, फिर दवाई की ओर पुड़िया लेके आती थी, फिर खिलाती थी, बच्चा पुड़िया भी खा लेता था और माँ बाहर जाती थी पीछे से गुड़ भी खा लेता था। दो तीन दिन ऐसे किया, चौथे दिन तो राम नाम सत्य हो गया। क्यों? क्योंकि खुशबू आती थी उसको। तो देखो, खुशबू ने उस बच्चे को क्या किया, बेचारे को जीवन से ही मुक्त कर दिया। कई बार हम भी ऐसा कर लेते हैं, डॉक्टर परहेज बताता है लेकिन खाने की चीज की खुशबू आ जाती है, पकोड़े की खुशबू आ जाती है और किसी चीज की खुशबू आ जाती है। फिर कोई ऐसे शुभ चिंतक मिलते हैं, कहते हैं थोड़ा सा खा लो, क्या फर्क पड़ता है, पहले वो थोड़ा सा है फिर हथौड़ा सा बन जाता है। तो बाबा बच्चों को कहता है नियम और संयम, जो शरीर के लिए नुकसानकारक चीज है वो थोड़ी भी बड़ी भारी पड़ती है। और ये नाक व्यक्ति की इज्जत का प्रतीक है, कहते हैं नाक ऊंची रहनी चाहिए। नाक कट गई, देखो मुहावरे भी कैसे कैसे बने हुए हैं, तो हम ब्राह्मणों के कुल की इज्जत बनी रहे, हमारी नाक हमेशा ऊंची रहे, हमारे बाबा की हम इज्जत बना के रखें, इस ब्राह्मण कुल का नाम ऊंचा रखें। और इसलिए रामायण में दिखाते हैं कि सुरपंखा की लक्ष्मण ने नाक काटी। अब काटने को तो और भी बहुत कुछ हो सकता है, बाल भी काटे जा सकते हैं, उंगलियां भी, लेकिन नाक ही क्यों काटी? क्योंकि नाक इज्जत का प्रतीक है, और नाक कट गई माना इज्जत मिट्टी में मिल गई। तो बाबा हम बच्चों को ये भी सावधानी देते हैं, हमारा कोई कर्म, कोई बोल, कोई व्यवहार, कोई दृष्टि, कोई खान पान, कोई पहनावा, चाल चलन ऐसा ना हो जो कोई उंगली उठाए कि देखो ये है तो ओम शांति वाला, ये है तो ब्रह्मा कुमार कुमारी, लेकिन देखो ये क्या कर रहा है। तो ये उंगली उठना भी क्या है? दुनिया वाले चाहे लाख बुरे कर्म करें, उनकी तरफ कोई उंगली नहीं उठाता, कि उनको पता है ये तो है ही ऐसे। लेकिन हमारे कर्मों को लोग बहुत ध्यान से देखते, बस में, सफर में, ट्रेन में, और झट बोलेंगे, अरे भाई हमने तो सुना था तुम लोग ऐसा नहीं करते, ये तुम ऐसा भी करते हो क्या? तो ऐसे लगता है जैसे वो अपने सारे काम छोड़ के हमारा ही सुपरविजन करते हैं, और सचमुच ऐसा करते ही हैं। तो हम बाबा के बच्चों की नाक हमेशा ऊंची रहे, झुकने ना पाए, हमारी नाक हमारे सारे कुल की नाक है, एक की नाक माना सारे ब्राह्मण परिवार की, हम एक नहीं है, हम सारा परिवार एक में है। और इसके बाद है मुख, मुख दो काम करता है, खाता भी है बोलता भी है। तो श्लोक में मछली बताई गई है, एक ऐसा जीव है जो जीवा के अधीन है, और बेचारी जीव के कारण कांटे में फंस जाती है। एक जीवा नहीं, चूहा भी देखो चूहेदानी में क्यों फंसता है, बंदर देखो कैसे पकड़ में आता है, खाने का शौकीन है, चने मुट्ठी में ले लेता है, छोड़ता नहीं है, फंस जाता है। और दुनिया में कितनी सारी बीमारियां जीव के कारण है, कहती हैं भूखे लोग इतने बीमार नहीं होते जितने ज्यादा खाने वाले बीमार होते हैं। अब जीव को तो थोड़ा सा टेस्ट आता है, लेकिन सजा तो पेट भोगता है। इस बार हमने मैगजीन में एक आर्टिकल डाला, आप सबने पढ़ा होगा, वार्तालाप जीव का और पेट का, वो एक मीटिंग हो रही है सबकी। तो जीव अपनी बड़ी महिमा कर रही है, मैं तुम सबका बड़ा ख्याल रखती हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये करती हूँ वो करती हूँ, अब सारे हाँ हाँ कर रहे हैं, आँख नाक कान मुंह, लेकिन पेट फिर धीरे से बोलता है, कहता है बहन तू वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी तू इतना कुछ कर लेती है कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है। तो ये सुन के जीभ को बड़ा गुस्सा आया कि सारी लोग तो मेरी महिमा करते हैं और ये पेट मेरी ग्लानी करता है। तो कहती है ठीक है मैं तेरे को मजा चखाऊंगी, और उसने उल्टा सीधा सब कुछ खाना शुरू कर दिया, इतना खाया कि पेट खराब हो गया। पेट खराब हो गया तो पेट खराब हो जाए तो फिर हाजमा ही खराब हो जाए तो क्या होगा? आंखें बाहर निकल आई, चमड़ी पीली पड़ने लगी, जीभ सूख गई। अब जीभ परेशान हो गई कि मेरा तो स्वाद ही गया, मुझे कुछ भी अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। तो पेट ने कहा ये तेरे किए का फल, अब तू कड़वी कड़वी दवाई खा। तो बेचारी जीभ को कड़वी कड़वी दवाई गटकनी पड़ी, स्वाद को छोड़ना पड़ा, तब जाके पेट को आराम आया, और पेट को आराम आया तो जीभ में थोड़ी रौनक आई। और दूसरा क्या करती हैं? बोलती हैं मुख से। तो बाबा ने हम बच्चों को सिखाया कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और सोच के बोलो। आजकल तो एक लेटेस्ट बात आई है कि सोच के बोलो नहीं, लेकिन सोच करके सोचो, यानी कि सोचने से पहले भी सोचो। तो बोलने से पहले तो कितना सोचो, पुरानी कहावत थी पहले तोलो फिर बोलो। वाणी के द्वारा बहुत नुकसान होते हैं, यही वाणी व्यक्ति को इनाम दिलवा देती है और यही वाणी आदमी को अपमानित भी करवा देती है। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि आप तो बड़े से बड़े बाप के बच्चे हो, इसलिए आपके शब्द भी बड़प्पन वाले हों, दूसरों को भी बड़प्पन दें, अपना भी बड़प्पन बढ़ाएं। एक बात को अपन पॉजिटिव भी बोल सकते हैं और नेगेटिव भी बोल सकते हैं, मीनिंग तो वही निकलेगा। अगर उसी बात को पॉजिटिवली बोलें, किसी को कहें भाई तुम तो भाई तुम्हारे देखते देखते तुम्हारे परिवार के सब लोग चले जाएंगे, तुम बड़े अभागे हो, और किसी को बोलो भाई तुम्हारी आयु तो बड़ी लंबी है, तुम अपने परिवार के सब लोगों को आखिरी तक आशीर्वाद देते रहोगे। तो एक ही बात है लेकिन कहने के तरीके अलग अलग हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को क्या सिखाया, देखो बाबा तो ये भी कहता है दुनिया वालों को कभी सीधा मत बोलो कि दुनिया विनाश हो जाएगी, उनको सदमा लगता है। कोई पूछता है ना कि बहन जी विनाश होगा, हम कहते हैं भाई दुनिया तो अविनाशी है, दुनिया का विनाश तो होता नहीं, सूरज चांद पृथ्वी सब तो रहेंगे। अच्छा तो विनाश किसका होगा, आत्मा का भी विनाश नहीं होता, वो भी अविनाशी, डरते क्यों हो। अच्छा तो विनाश किसका होगा, बुराई का होगा। डॉक्टर भी क्या करता है, डॉक्टर जो शरीर के अंदर गंदगी फोड़ा उसको खत्म करता, आदमी को खत्म थोड़े करता है। तो ये जो विनाश होगा, इसमें जो तमोगुण है, बुराई है, पाप है, वो नष्ट होगा, बाकी तो आत्माएं भी नष्ट नहीं होती और प्रकृति के पांचों तत्व भी नष्ट नहीं होते। तो बताओ वो खराब चीज नष्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो वो खुद ही कहेंगे हाँ होना चाहिए। तो अपन अपने मुख से ऐसा बोलें जो दूसरे को सुन करके अच्छा लगे। अब कई कहते हैं अच्छा ब्रह्मा कुमारी में जा करके सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना थोड़े पड़ेगा, आपको मिलेगा, छोड़ना कुछ नहीं है। अब पहले आप कहते थे मेरे दो भाई हैं, अब जब आप बाबा के बच्चे बन जाओगे तो आपके करोड़ों भाई बन जाएंगे। पहले आप कहते थे हमारा घर तो बहुत छोटा सा है, अब जब आप बाबा के बच्चे बन जाओगे बाबा के सारे घर आपके हो जाएंगे। ये मधुबन देखो कितना बड़ा घर है। पहले आप सोचते थे कि भाई मेरा तो फलाना संबंधी नहीं है, लेकिन आप बाबा के बन जाओगे तो भगवान से भी सर्व संबंध और मनुष्यों से भी आपको सब संबंधों का अनुभव होने लगेगा। बुजुर्ग भी मिल जाएंगे, बच्चे भी मिल जाएंगे, हम जिन्स भी मिल जाएंगे, इतने बड़े परिवार में सब कैटेगरी के लोग मिल जाएंगे। तो भगवान का बनना माना कुछ छोड़ना नहीं है, पाना ही पाना है। ये तो प्राप्ति का मार्ग है, त्यागने का मार्ग नहीं है। आपको ना घर छोड़ना, ना भोजन छोड़ना, ना आपको अपनी मनपसंद कपड़े छोड़ने, ना आपको कोई और अपनी ड्यूटी या बाल बच्चे छोड़ने, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना। तो कहेंगे अच्छा फिर क्या छोड़ना है, छोड़ना तो कुछ है ही नहीं ना, आपको केवल लेना ही लेना है। आप बाबा से लो, लेते जाओ, भरते जाओ अपने आप को। तो जो आपके काम की चीजें नहीं है वो अपने आप से आप ही छूट जाएंगी। तो अपने को ज्ञान इस तरीके से देना है कि दूसरे आदमी को क्यूरियोसिटी हो मैं लूं, ये तो बहुत अच्छी चीज है। अब कई पूछते हैं अच्छा आप खाना बाहर का नहीं खाते हो, हमारे हाथ का नहीं खाओगे, आप बाजार का नहीं खाओगे। हम कहते हैं हम खाते तो सब कुछ हैं, लेकिन बस थोड़ा भगवान को भोग लगा के खाते हैं। फिर वो कहते हैं अच्छा आप यहाँ ट्रेन में ये चीज़ देते हैं, आप इसी का भोग लगा लो। हम कहते हैं नहीं, यहाँ तो देखो ना थोड़ा साफ स्वच्छ धोया मांजा नहीं है, हमारा थोड़ा नियम है साफ सुथरी स्वच्छ जगह में बैठ के भोग लगाती। तो ना नहीं करना। अच्छा आप हमारे हाथ का नहीं खाते, आपके हाथ का भी हम खा लेंगे, लेकिन बस आप थोड़ा योग लगाना सीख जाओ, फिर देखो आपके हाथ का भी खा लेंगे। बताओ आप सीखोगे योग लगाना? हम आपके हाथ का भी जरूर खाएंगे। तो अपन पॉजिटिव बोलेंगे तो उनको वो नफरत जो आती है ना एकदम, या हमको ऐसा समझते हैं ऐसा समझते हैं, फिर वो दूरियां खत्म हो जाएंगी, स्नेह जागृत होगा। तो ज्ञान भी अपने को बहुत मीठा मीठा बोल के प्यार प्यार में ऐसे देना है कि उनको लगे कि ये मेरे बड़े काम की चीज है। और पांचवी इंद्रिय स्पर्श, उसके अधीन हाथी को दिखाते हैं। इतना बड़ा हाथी और इस स्पर्श के कारण गड्ढे में डल जाता है, देखो फिर उसके ऊपर लोग सवारी करते हैं, बोझा ढोते हैं। 100 लोग भी जिसको नहीं बांध सकते थे, जंगली हाथी को, उसको देखो आदमी बांध भी लेता है, पालतू बना लेता है, उससे सेवा लेता है, तो हाथी अधीन हो गया। तो इतना बड़ा मनुष्य, और कई बार इस स्पर्श के कारण अधीन हो जाता है। आजकल देखो कितनी चीजें हैं जो सॉफ्ट बनाई जाती हैं इसलिए कि हमारे हाथों को सॉफ्ट लगे, और उस सॉफ्ट चीज को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति बुराई के चंगुल में आ जाता है। सॉफ्ट गलीचा चाहिए, सॉफ्ट बहुत सॉफ्ट सोफा चाहिए। अब साधारण सोफे से भी काम चल सकता है, लेकिन वो इतना सॉफ्ट चाहिए कि ऊपर से बैठो तो पूरा जमीन में ही चला जाए आदमी। अब उसकी कीमत 50,000 है, अब सीधे हाथ से नहीं तो फिर वो टेढ़े हाथ से 50,000 निकालने की कोशिश करते हैं, और उसमें फिर कई बार व्यक्ति को बड़ा नुकसान हो जाता है, चरित्र का नुकसान होता है, वैसे भी नुकसान हो जाता है। तो बाबा हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे चीजें सॉफ्ट हो या ना हो, पर आपका मन जरूर सॉफ्ट होना चाहिए। मन खुरदुरा नहीं हो, मन पत्थर जैसा कठोर ना हो, मन एकदम स्पंज जैसा मुलायम हो, लचीला हो, समय अनुसार मोल्ड हो जाए। तो जो समय और परिस्थिति के अनुसार अपने को मोड़ लेगा, अपने को तो भीतर से सॉफ्ट होना है, वो सदा विजयी बनेगा। तो इन पांचों के हम मालिक हैं, पांचों को हमें दबाना नहीं है लेकिन कमल समान बनाना है, क्योंकि हम बच्चे होवनहार देवता हैं, और देवताओं की हरेक इंद्री, उनके पांव देखो कमल में, हाथ में देखो कमल, कितनी महिमा है। किसी देवता की मूर्ति कमल के बिना पूरी नहीं होती है। तो ये हमारी यादगार है, हमने इस गंदी दुनिया में रहते भी अपने आप को कमल की तरह से बना के रखा, तभी तो यादगार बनी है ना। और हम अपना वही पार्ट फिर से रिपीट कर रहे हैं, और कमल तुल्य प्रैक्टिस करते करते फाइनल हम सारी दुनिया को ही कमल जैसा पवित्र बना देंगे। ओम शांति।